आज की फिल्म्स और पहली फिल्म्स में जो इतना हम फर्क देखते हैं, इसके बारे में आपका क्या क्या ख्याल है?
हमारे माशरे में ही ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जो पहले का माशरा था वो अलग था, आजकल का अलग है। आजकल का हाय बाय और इस किस्म के मुख्तसर टेलीग्राफिक जुमलों पे सब बात मुश्तमिल है। पहले आदाब थे, हमारा एक इंडियन कल्चर था और इंडियन कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी पोइट्री थी, लिटरेचर था, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी उसके अंदर। तो इन ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम द ओल्डर ट्रेडिशन इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, देर हैज़ बीन एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, इनकलाब आ गया है। न वो शायर हैं न वो शायरी है, और अगर आप किसी को आज शेर पढ़ें तो किसी के समझ में भी नहीं आएगा। आपने कल देखा हमारा जो शो था, कामयाब था, 30-32 हज़ार आदमी थे वहाँ पर, लेकिन कितना हंगामी था और तुन तुन तारा तारा तीन दिन तना नना ऐसी कुछ बातें होती हैं, लेकिन अगर आप उनसे कोई शेर कहें तो कोई समझेगा नहीं। और उनका रिदम आपने देखा कितना इमिटेटिव था ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वेस्ट। तो वो हमारी वैल्यूज़ जो थी उसके साथ हमारा लिटरेचर मफकूद हो गया। लिटरेचर के मफकूद होने के साथ साथ वो वैल्यूज़ अब सिनेमा में कम रही हैं, और जितनी फिल्में आप देखते हैं आइदर दे आर बोरोड इन थीम एंड इन स्ट्रक्चर फ्रॉम दी ओल्ड हिंदी फिल्म्स और फ्रॉम सम मॉडर्न फिल्म, दिस इज़ द डिफरेंस।
इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? आगे आगे बस ये डिटीरियोरेट होता जाएगा, स्टैंडर्ड्स लो होते जाएंगे और सिर्फ कॉपीज रह जाएगी वेस्टर्न फिल्म्स की?
जब तक हम अपने माशरे की वैल्यूज़ नहीं लाएंगे, माशरे में ही वैल्यूज़ नहीं होंगी, घर के अंदर ही तमीज़ और आदाब नहीं होंगे। बच्चे जो हैं फोर लेटर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप जो हैं वो ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं हैं, बच्चों को अदब और आदाब जो हैं वो सिखाए नहीं जाते हैं। आजकल लिबर्टी के तहत ज़रूर लिबर्टी दीजिए, लेकिन लिबर्टी का मतलब बदतमीज़ी नहीं होता। तमीज़ तो सिखाने और आदाब सिखाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि वो खूबसूरत है और वही हिंदुस्तानी तहजीब का जेवर था।
ये डिटीरियोरेशन जो हो रही है फिल्म्स की, ये आगे आगे कहाँ जाके ख़त्म होगी आपको लगता है? कोई चांस है कि शायद इम्प्रूव हो जाए आगे आगे जाके, ज़्यादा सीरियस हो जाए? बिकॉज जितना ज़्यादा ये वेस्टर्न फिल्म्स देखते हैं तो शायद सीखें कि कैसी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, कैसी कोई मतलबी फिल्में बनानी चाहिए, अच्छे प्लॉट अच्छे डायलॉग।
बात बहुत सादा है, मसलन हम कहते हैं कि हमारा गल्ला बराबर नहीं होता, तो कोई ऐसी उम्मीद है कि ये गल्ले और ये फल ज़्यादा अच्छे हो जाएं, हमारे जानवर भैंसे वगैरह गाय हैं जो हैं वो उनकी सेहत अच्छी हो और दूध अच्छा देने लगें? इसके लिए कोई नुस्खा तो नहीं है। तो हमको तो बुनियादी असल पे जाना होगा कि पहले अपनी ज़मीन को खोदें और उसको बराबर उसके लिए आप पाशी करें और इरिगेशन प्रोवाइड करें, उसके लिए अच्छा मैन्योर और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स लाएं, और फिर वर्जिन सॉइल टर्न अप करें और उसमें नो हाउ डेवलप करें, तब जाके कहीं वो चीज़ इम्प्रूव होगी। इसलिए हिंदुस्तानी फिल्म को इम्प्रूव करना कोई ऐसी सादा कोई चाबी नहीं है जिसको हम घुमाएंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा।
हमने देखा है कि पहले मंझे हुए एक्टर्स होते थे, पर आजकल तो सिर्फ बस अच्छे चेहरे दिखते हैं और कोई टैलेंट नहीं दिखता खास। इसकी क्या वजह है और ये भी इम्प्रूव होगा कि नहीं?
जो जैसे आप बिल्कुल माशरे का अक्स देखेंगे, जैसे कि बहुत मालदार लोग होंगे लेकिन आदाब नहीं है उनमें, तमीज़ नहीं है, न सलीका है न वैल्यूज़ है। वैल्यू क्या है? पैसा कमाओ। इसी तरह सियासत को आप देख लीजिए ना, मिनिस्टरों की क्या वैल्यूज़ होती हैं? या तो वो वोट जेब में डालें या वो किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ आमदनियाँ या बढ़ाएँ। जब तक के हम अपने कल्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे और लगन पैदा नहीं करेंगे, अगर पैसे का ही हवस हो, क्योंकि देखते हैं सब लोग कमा रहे हैं, किसी के पास गाड़ी है, अंदर के वीडियो हैं, टीवी हैं, सब साइंटिफिक चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजिकल रिफाइनमेंट्स हैं वो घर में हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, लोग पैसे में सिक्योरिटी महसूस करते हैं। वो ज़माना नहीं रहा जहाँ क्वालिटेटिव ज़िंदगी थी, आजकल क्वान्टिटेटिव ज़िंदगी है। तो ये एक नए दौर की नई कदरें हैं, ये हिंदुस्तान में भी हैं, और जब तक कि वो पैसे से और क्वांटिटेटिव लिविंग से हट के क्वालिटेटिव काम पर अपनी तवज्जो नहीं देंगे, जब तक कि क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेगा उनको, तो क्वालिटेटिव होना बेमानी है। हम क्वालिटेटिव फिल्म की तलाश में, स्क्रिप्ट की तलाश में बार दफ़ा 6-6 महीने साल साल बैठे रहते हैं कि कोई हमको क्वालिटेटिव स्क्रिप्ट मिले, वो मिलती नहीं है। इसलिए क्वालिटेटिव स्क्रिप्ट आए, क्वालिटेटिव बनाने वाले आए, तो ये लोग तवज्जो करेंगे। अच्छा पिक्चर बनाने वाला डिमांड करेगा अपना टाइम, अदरवाइज दे टेंड टू क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप को। एक कैरेक्टर उसी में, वही कैरेक्टर लगभग दूसरे में, उसी के ऊपर एक थोड़ा सा दूसरा वैसे वेरिएशन तीसरे में, और एक ही पर्सनैलिटी है जो बिकाऊ है, वो चल रही है। पहले हम पर कुछ डिमांड्स आती थी और कुछ डिमांड्स हम अपने ऊपर डाल लेते थे कि भाई देवदास से बड़ा इंट्रोवर्ट है, बड़ा दुखी है, बड़ा रोता धोता है, गंगा है, बहुत आउटवर्ड है, एक्सट्रोवर्ट है, चिल्लाता है, गांव का है, रस्टिक है, उसमें से रस्टिक बू आती है, शहजादा सलीम है तो उसमें एक मुगलिया किस्म का तमतराक है। नो, दिस इज़ ऑल ईजियर सेट देन डन। इसको कहना आसान है लेकिन करने में बड़ी साधना करनी पड़ती है। साधना मतलब अपनी पर्सनैलिटी को तो कहीं आप अलग हटा के रख दें। दिलीप कुमार की एक ज़ाती पर्सनैलिटी भी तो है ना, उसको हटा के मिटा दो, उसको बीच में मत आने दो, और नए रिदम सीखो, नए तलफ़ से सीखो। कोई चीज़ आती नहीं है, खाली कोहिनूर की सितार सीखने में मुझे 2.5 बरस लग गए कि मैं उसको होल्ड कर सकूं। इसलिए वो जब गाना पहले हो रहा था, मैंने कहा नहीं साहब, आप अभी मत लें, इसको फिल्म के आखिर में लीजिएगा जब ख़त्म होने लगेगा। तब तक मैं उसकी प्रैक्टिस करता रह गया, मेरी उंगलियां भी कट गई थी हमेशा सितार से। तो डेडिकेशन मांगता है ये काम।
इससे हटके एक ये रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं बॉम्बे में, इसके बारे में आपसे पूछते हैं कि ये बहुत सुना है कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस हो गए हैं फिल्म वर्ल्ड में, शायद पहले से ही थे पर अब तो काफ़ी फैल चुकी है ये बात, इसकी ज़रूरत क्या थी और आप बताएंगे कि इसका असर क्या होगा?
अंडरवर्ल्ड पर फिल्म इंडस्ट्री नहीं चल रही है, गलत ख्याल है। कोई आउटर पेरिफेरी पे कुछ लोग आते होंगे, वो अपने हाथ जला के फिर एक दो फिल्में बना के चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, हमेशा लोग आते रहे, कुछ पैसे वाले लोग आते हैं कि चलो फिल्म बनाएंगे, बड़ा ग्लैमरस काम है, और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर जो 40-45 या 50 साल से चल रहे हैं, दे आर नॉट दी अंडरवर्ल्ड पीपल। अंडरवर्ल्ड पीपल आप अपने ज़रा टेलीविजन, ये जो रेडियो है, इसमें जाके और लोगों से सवाल करें कि वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस कहाँ पे हैं, हुकूमतों में हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों में हैं। नाम लेना बेअदबी है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, वरना आपकी बात का बड़ा माकूल जवाब देता कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है राइट्स का, दीज आर नॉट इवन कम्यूनल राइट्स, ये हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं थे, ये बनाए गए। पहले मस्जिद को जब डिफाइल किया गया तो लोगों में तो एक प्रोटेस्ट का रिएक्शन हुआ उसका, लेकिन उसके बाद जो लोग चाहते हैं कम्युनल हॉटस्पॉट्स बनना, जो चाहते हैं मुल्क में डिवाइड, जो उसको तकसीम करना चाहते हैं एंड वांट टू एक्सप्लॉइट दिस, कोई आदमी अगर किसी मुसलमान का घर जला दे या बम फेंक दे या उसको चाकू मार दे या उनकी बीवी को बृहस्पति कर, तो वो कोई हिंदू धर्म की सेवा नहीं है, ये दरिंदगी है। It's a bestial thing. Likewise, even if a Muslim does the same and stabs somebody or tries to kill someone or throws a bomb, he is not doing any service to Islam. That is not Islam. People are poor. People who have suffered are poor. वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वो आपस में बहुत सुलूक और आश्ती के साथ, इत्तेफाक और आश्ती के साथ रहते रहे हैं। उनका सवाल मैडम खाली ये होता है कि 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए और कहीं कपड़ा मिल जाए, बच्चे के लिए कुछ ओढ़ने को मिल जाए या कुछ किताब विताब पढ़ ले, ये उनकी ज़िंदगी है। इस ज़माने में अगर इंसान का, हमने ये सीख लिया है सब मज़हबों को टटोलने के बाद, जबकि सुबह नाश्ता हम बम्बई में करते हैं और दोपहर का खाना हम लंदन में खा सकते हैं और रात का खाना हम अमेरिका में खा सकते हैं, तो इंसान घूम के ये सीख चुका है कि दी ओनली रिलीजन इज ह्यूमन डिसेंसी। एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, इंसानियत से रहिए। अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप में आप सिविलाइज नहीं है, तो आपका कोई धर्म नहीं है, ना आप हिंदू हैं, ना आप मुसलमान हैं, ना आप ईसाई हैं।